नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता के विजय दुर्ग स्थित भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन 17 सितंबर तक चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री कल शाम कोलकाता पहुंचे। संयुक्त कमांडर सम्मेलन में विश्व की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुए सेना का आधुनिकीकरण, सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं के बीच समन्वय और अन्य पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री बिहार में के पूर्णिया में श्री मोदी 36,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी एक नवनिर्मित हवाई अड्डे के टर्मिनल का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी उद्घाटन करेंगे। बोर्ड की स्थापना की घोषणा इस वर्ष के केंद्रीय बजट में की गई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मखाना और बिहार का गहरा संबंध है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड इस क्षेत्र के किसानों को लाभान्वित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 दिवसीय असम यात्रा के दौरान 18,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कल गोलाघाट जिले में नुमालीगढ़ रिफाइनरी का दौरा किया, जहां उन्होंने भारत की पहली बांस आधारित जैव रिफाइनरी का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने एक जनसभा में कहा कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के मिशन पर है और विदेशी ईंधन पर निर्भरता कम कर रहा है।
बांस से बायो इथेनॉल बनाने वाले आधुनिक प्लांट का उद्घाटन किया गया है। ये असम के लिए बहुत गर्व की बात है। इथेनॉल प्लांट के लोकार्पण के साथ ही आज यहाँ पॉलीप्रोपिलीन प्लांट का शिलान्यास भी हुआ है। ये प्लांट असम में उद्योगों को बल देंगे, असम के विकास को गति देंगे, किसानों, नौजवानों, सभी के लिए नए अवसर बनाएंगे।
इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने दरांग जिले में दरांग मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और एक जीएनएम स्कूल की आधारशिला रखी। सर्वोच्च न्यायालय वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज अपना निर्णय सुनाएगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 22 मई को इस बारे में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार न्यायालय आज इस मामले में अपना आदेश सुनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेनाओं के लिए राजस्व खरीद में तेजी लाने, प्रक्रिया को सरल बनाने तथा घरेलू उद्योग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रक्षा खरीद मैनुअल 2025 को स्वीकृति दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संशोधित दस्तावेज आधुनिक युद्ध के युग में सशस्त्र बलों की उभरती आवश्यकताओं के लिए सहायक होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर में अगली पीढ़ी के सुधारों की शुरुआत के बाद से 99% वस्तुओं पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। चेन्नई में व्यापार और उद्योग संघ के एक संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 8 साल पहले जब ये कर प्रणाली लागू की गई थी तब कुल 65 लाख कंपनियों ने जीएसटी का भुगतान किया था। अब ये संख्या बढ़कर 1.5 करोड़ हो गई है। एशिया कप T20 क्रिकेट में ग्रुप ए के मुकाबले में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर अपना विजयी अभियान जारी रखा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 127 रन ही बना सकी। भारत ने 25 गेंद शेष रहते ये जीत हासिल की। मैच के बाद अपने संबोधन में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहलगाम आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए टीम की जीत को भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ी है।
We actually stand with all the victims of Pahalgam terror attack, and we stand with their families also, express our solidarity. Also, we dedicate this win to our brave armed forces who took part in Operation Sindoor.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने टीम के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि उनकी दृढ़ संकल्पता और टीम भावना उत्कृष्ट रही। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।